ओम शांति। जब दो चीजें जीवन में बढ़ती हैं तो मनुष्य चाहकर भी एक दूसरे को गले नहीं लगा सकता। कौन सी दो चीजें ऐसी हैं? नफरत और ईर्ष्या और पेट और दूसरा घमंड। सही, एक पेट दूसरा घमंड। जब मनुष्य का पेट बढ़ जाएगा तो उसको गले कैसे लगाएंगे? और घमंड, जब घमंड हो जाता है तो भी एक दो की तरफ तो नजर करते नहीं है, मुख फेरते नहीं है। तो दो चीजें ऐसी हैं जो चाहकर भी मनुष्य एक दो को गले नहीं लगा सकता है। तो आज का विषय है घमंड की मंडी। आज की मुरली में बाबा ने दो जगह जिक्र किया है इसका, वैसे और भी है सूक्ष्म रूप से, लेकिन दो जगह मुख्य रूप से, एक तो सन्यासियों के बारे में और दूसरा साइंस के बारे में कि साइंस घमंडी है। और सन्यासियों को भी पर्सनल बताओ, क्योंकि उनको भी अपना अहम होता है, घमंड होता है। तो हम देखेंगे जीवन में घमंड बढ़ता है तो कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, और घमंड आने के क्या क्या कारण है, और कहां कहां घमंड पैदा होता है। क्योंकि अहंकार या अथवा घमंड अथवा गुमान अर्थात अथवा अभिमान, ये सब एक ही पर्यायवाची शब्द है, घमंड अहंकार गुमान अभिमान। तो अहंकार एक ऐसी चीज है जैसे एक नींबू की बूंद जो है वो पूरे दूध को बर्बाद कर देती है। इसी तरह अहंकार अगर हमारे जीवन में है तो हमारे पुरुषार्थ पर सारा किए किराए पर वो पानी फेर देती है। अहंकार जितना हमारे जीवन में बढ़ता है उतने हमारे रिश्तों में दूरियां बढ़ती जाती हैं। हमें कोई अच्छा नहीं मानता है, सब लोग जैसे डर डर कर रहते हैं अभिमानी से। तो घमंड जो है क्यों पैदा होता है और कब से पैदा होता है, क्या क्या कारण हैं उसके, उस पर हम चर्चा करेंगे। स्थूल और सूक्ष्म दोनों हम साथ साथ लेंगे। जैसे घमंड जो है मनुष्य को पहले अपने शरीर पर भी घमंड होता है, शारीरिक बलिष्ठता अर्थात शरीर की ताकत, उसकी शरीर उसका शरीर जो शक्तिशाली है उस पर भी उसको अभिमान होता है, और साथ साथ में शारीरिक सौंदर्य पर। हमें पता है एक दिन ये शरीर जो है मुट्ठी पर खाक में मिल जाएगा, मुट्ठी पर खाक भी नहीं रहेगी, मिल जाएगा, लेकिन फिर भी हम पूरी उम्र अपने शरीर को कितना सजाते हैं, सवारते रहते हैं। जो कल परसों बाबा ने भी कहा कि शरीर का सौंदर्य करने के लिए क्या क्या करते हैं, पाउडर क्रीम लिपस्टिक सब कितने चीजें लगाते हैं, उसको निखारते हैं। ये भी एक अभिमान है, घमंड है अपने शारीरिक सौंदर्य पर। और शारीरिक सौंदर्य तो एक भ्रम है, ये वास्तव में दिन प्रतिदिन ये किस तरीके से ढलता जाता है, क्रूप होता जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो बीमारी में भी कैसे उस शरीर की सारा रंग रूप ही बदल जाता है, फिर कैसे उससे दूरियां बढ़ने लगती हैं। तो शारीरिक सौंदर्य भी एक भ्रम है। ये तो ये ऐसे है शारीरिक सौंदर्य जैसे कि एक प्लास्टिक की थैली हो और उस बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे रही है और अंदर में कूड़ा कीचड़ भरा हुआ दुर्गंध है। तो उसी तरह से शरीर भी है, बाहर से तो चमड़ी देखने में अच्छी लगती है लेकिन अंदर से इसके अंदर क्या भरा पड़ा है। जब हम इस विस्मृति में चले जाते हैं तो शारीरिक सौंदर्य आकर्षित करता है तो हमारा अभिमान भी बढ़ने लगता है और वो अभिमान हमें डुबो देता है। हमारे पुरुषार्थ जो है, पुरुषार्थ के जो पांव हैं आगे नहीं बढ़ पाते हैं और वहीं हमारी रुकावट हो जाती है। तो ये भी एक चीज है शारीरिक सौंदर्य से, इसमें भी हमको फंसना नहीं है। जैसे बाबा ने आज कहा बंधन तो बंधन ही है, चाहे वो सोने की डाली है चाहे वो हीरे की डाली है, श्रेष्ठ कर्म भी एक बंधन है। तो इन बंधनों से भी हमको ऊपर उठना है। तो इस सूक्ष्म रूप से अभिमान जो है हमारे दिन प्रतिदिन कहीं हमें हमारे मन को, मन रूपी पंछी है जो नील गगन में उड़ना चाह रहा है लेकिन उसको पकड़ को तो नहीं रख रहे हैं। तो शारीरिक सौंदर्य है, शारीरिक बलिष्ठता है, ये भी हमारे घमंड का एक, घमंड की मंडी के दरवाजे समझ लीजिए। उसके बाद देखेंगे हम शारीरिक सौंदर्य के साथ साथ पद प्रतिष्ठा। पद प्रतिष्ठा का भी बहुत घमंड होता है इंसान को, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे शारीरिक संबंधों का घमंड होता है। संबंधों में भी देखते हैं हम, अगर किसी का कोई संबंधी अच्छी पोस्ट पर होता है तो उसको भी अपना घमंड होता है। जैसे कई बार कहते हैं जी मेरा आपके कितने बच्चे हैं, तो गिनती बाद में बताएगा। बोलेगा मेरा बच्चा एक अमेरिका में रहता है, वो वहाँ इस पोस्ट पर है, दूसरा इंजीनियर है, तीसरा डॉक्टर है, अपनी पोस्ट पोजीशन की वो बखान शुरू कर देता है। तो संबंधों में भी कहीं ना कहीं घमंड हमारे मन बुद्धि में छाया रहता है, जो कि उन्हीं की तरफ हमारी बुद्धि लगी रहती है, और उस घमंड की मंडी में हम चक्र भी बनके मन उसी चक्र में भ्रमित होता जाता है, उनसे निकल नहीं पाता है। और जितना उन संबंधों का हम बखान करते हैं, उनका विस्तार करते हैं, तो विस्तार ही हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन जाता है। वो ही उसी भंवर जाल में, उसी मकड़ी के जाल, मकड़ी की तरह जाल जो मकड़ी बुनती है और अपने आप मर जाती है, तो उसी तरह हमारा पुरुषार्थ भी उसी दायरे में रह जाता है, सीमित रह जाता है। तो ये जो संबंध है, संबंध भी कहीं ना कहीं हमें घमंड के मंडी में लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे स्थान का। स्थान का भी कई बार बहुत घमंड होता है, एक वैसे शुद्ध घमंड होता है, एक दूसरा अशुद्ध घमंड है। कहीं हम चले जाते हैं या कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा होता है तो स्थान का भी उनको घमंड होता है कि मैं फलाने स्कूल में पढ़ा हुआ हूं, या मैं मधुबन निवासी हूं, ये भी एक घमंड है। वास्तव में बाबा ने उस दिन मुरली में कहा था कि यहां से, यहां जो रहते हैं और जो बाहर रहते हैं, यहां रहने वालों से बाहर वाले भी आगे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी घमंड में भी नहीं रहे कि मैं यहां तो आ गया हूं। केवल स्थान का महत्व नहीं है, स्थिति का महत्व है। तो स्थान भी हमको पकड़ लेता है, या मैं फलाने बड़े सेंटर का हूं, या मैं फलाने शहर का हूं, ये तो गांव का है, ये गांव का अनपढ़ है, मैं शहर का बहुत समझदार हूं, अच्छे स्कूल में पढ़ा हूं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं। तो स्थान भी हमारे घमंड को चार चांद लगा देता है, वो भी जैसे हमें घमंड की मंडी की तरफ ले जाता है। तो शारीरिक बलिष्ठता, शारीरिक सौंदर्य, शारीरिक संबंध और स्थान, ये चार चीजें जो हमें घमंड की मंडी की तरफ ले जाते हैं। इसी तरह हम देखेंगे पद प्रतिष्ठा, जो बात कर रहे थे हम पद प्रतिष्ठा की। पद प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं हमें पुरुषार्थ से बहुत दूर कर देती है, क्योंकि उसी घमंड में रहते हैं। जितना पद प्रतिष्ठा के ख्यालात हमारे मन में रहते हैं, तो हम पुरुषार्थ से जैसे दूर होते जाते हैं, क्योंकि और दूसरों से भी हमारी दूरियां बढ़ती जाती हैं। अपने पद प्रतिष्ठा के गुमान के कारण ही अनेक प्रकार के ऐसे संकल्प हमारे मन बुद्धि में एकत्रित हो जाते हैं, जो हमें बाबा से दूर करते जाते हैं। क्योंकि हम अपने आप को कुछ एक अच्छी पोस्ट पर समझते हैं, तो उस पद प्रतिष्ठा का जो ख्याल रहता है, वो भी हमारे पुरुषार्थ में बाधक बनता है। तो इस घमंड से भी हमको मुक्त रहना है। नेक्स्ट है धन दौलत। धन दौलत का भी बहुत घमंड रहता है। सबसे बड़ा धन है ज्ञान का धन, लेकिन उस धन, ज्ञान के धन का भी कहीं हमको नशा न चढ़ जाए कि हमें तो बहुत ज्ञान हो गया है, दिन प्रतिदिन हमारे ज्ञान की प्रगति होती जा रही है ना। इसी संदर्भ में हमने देखा, एक बार पढ़ा था कि विद्वान जो कालिदास, महाकवि कालिदास थे, तो अपने को बहुत विद्वान मानते थे, विद्वता का उनको थोड़ा घमंड था, और सारी माने काफी लोग उनको जानते थे, उनसे परिचित थे। तो एक बार क्या हुआ, उनको निमंत्रण मिला पड़ोसी राज्य से कि आपको यहाँ आकर प्रवचन करने हैं। तो वो जाते हैं प्रवचन करने के लिए, सोचते हैं मुझे शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं सकता, शास्त्रों के बहुत ज्ञाता थे, बहुत ज्ञान उनकी बुद्धि में था, कंठ में था, जैसे कंठ में लोग मानते थे उनके कंठ में जैसे साक्षात सरस्वती वास करती है, ऐसा माना जाता था महाकवि कालिदास के बारे में। तो एक बार उनको पड़ोसी राज्य से निमंत्रण मिलता है कि आपको आके यहाँ प्रवचन करने हैं। तो जैसे वो अपने राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, तो गर्मी का मौसम होता है, बहुत गर्मी होती है, तो उनको प्यास लगती है रास्ते में। तो एक जगह जाते हैं, दूर दूर तक तो पहले कुछ मिलता नहीं है, लेकिन दूर में एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई पड़ती है। तो झोपड़ी से एक कन्या बाहर निकलती है छोटी सी, तो वो कन्या को देख के बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। तो उनको थोड़ा अहम होता है महाकवि कालिदास को, तो कन्या कहती है पहले आप बताइए आप कौन हो। तो कहते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूं, आप मुझे पहचानते नहीं हो, लोग मुझे बहुत पहचानते हैं, आपके घर में कोई बड़ा नहीं है, महाकवि कालिदास उस कन्या को कहते हैं, आप उसको बुलाओ, वो मुझे जानते होंगे, मैं बहुत बलवान हूं, महान हूं। तो कन्या कहती है, बलवान तो संसार में दो ही चीजें हैं, आप कैसे बलवान हो सकते हो। तो उसको थोड़ा अचरज लगता है कि छोटी सी कन्या ऐसा कैसे कह रही है। तो उसने पूछा, कौन बलवान होता है? तो उसने कहा, अन्न और जल। बोला, अगर अन्न और जल नहीं है तो आदमी बलवान क्या है, बलहीन बन जाता है। जैसे आपको प्यास लगी है, अगर पानी नहीं मिले तो आपका, आपकी वो बलवान, आपकी जो अंदर की ज्ञान की शक्ति, वो कहाँ चलेगी। तो अन्न और जल बहुत बलवान है। तो वहां थोड़ा सा महाकवि कालिदास को थोड़ा धक्का लगता है। फिर उसके बाद फिर वो कन्या कहती है, फिर नहीं आप बताओ आप हो कौन। तो वो कालिदास कहता है, मैं और दो चार चीजें बताते हैं, कहता मैं बटोही हूं, बटोही माना अर्थात जो यात्री हूं। तो कन्या कहती, यात्री तो दो ही हैं संसार में, जो निरंतर यात्रा करते रहते हैं। तो उसको उसका भी नहीं उतर आता महाकवि कालिदास को। तो कहते, कौन है? सूर्य और चंद्रमा। तो कालिदास जी निरुत्तर हो जाते हैं और कन्या वो चली जाती है अंदर, पानी नहीं पिलाती उसको। फिर अंदर से एक माता जी निकलते हैं, माता जी फिर वो अपना मटका लेके कुएं के पास जाते हैं, भर के लाते हैं। फिर वहां का भी कालिदास जी प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे पानी पिलाओ। तो कालिदास जी को माता जी पूछते हैं कि आप हो कौन, पहले आप ये बताओ। तो कालिदास जी कहते हैं कि मैं मेहमान हूं। तो माता जी कहते हैं, मेहमान तो संसार में दो ही हैं, आप मेहमान नहीं हो सकते। तो बोला, कौन मेहमान है? बोला, एक धन और दूसरा यौवन, मेहमान की तरह जो आते हैं और चले जाते हैं। तो फिर कालिदास को फिर भी पानी पीने को नहीं मिलता है। फिर पूछा माता जी, फिर पूछते, नहीं आप बताओ सच सच में आप कौन हो, आप तो ये नहीं हो, मेहमान नहीं हो। तो बोला, मैं बहुत सहनशील हूं। बोला, सहनशील तो संसार में दो ही हैं। बोला, कौन? एक धरती और दूसरे पेड़ जो फल देते हैं, और धरती इतना पाप आत्मा का भी बोझ सहन कर रही है, तो सहनशील तो यही है, तो आप कौन हो? वो कहता, मैं बहुत हठी हूं। तो बोलता है माता जी, कहते हैं वो हठी तो दो ही है संसार में, कौन? एक केश और दूसरे नाखून, जो काटने के बाद भी निकल आते हैं। तो कालिदास निरुत्तर होकर वो चरणों में गिर पड़ता है। तो एक उसको अपनी विद्वत्ता जो घमंड था, तो वो चकनाचूर हो जाता है, चूर चूर जाता है। फिर उसको वो माता जी साक्षात सरस्वती के रूप में वहां पेश होते हैं, प्रस्तुत होते हैं, उनको साक्षात्कार होता है, अर्थात उनका घमंड चकनाचूर करने के लिए। हाँ, मूर्ख हूं। मूर्ख तो दो ही होते हैं, एक राजा और एक पंडित होता है। राजा जो बिना योग्यता के राज्य करता है, और पंडित जो राजा की हां में हां मिलाता रहता है, उसके मूर्ख से भी नीचे। तो ऐसे संसार में जो विद्वता है, तो कहीं सूक्ष्म रूप से हम भी उस मां कवि कालिदास की तरह तो नहीं कहीं समझ रहे हैं। तो उस घमंड के चक्रव्यूह में या घमंड की मंडी में भी कभी हमारा जीवन ऐसे तो नहीं चला जा रहा है, तो भी हमको जांच करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ज्ञान का घमंड हो जाता है, वो ज्ञान ही हमारे लिए बाधक बन जाता है कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरा चिंतन बहुत अच्छा है, मेरी सोच बहुत अच्छी है, मेरे संकल्प बहुत शुद्ध हैं, मैं तो प्रखर चिंतन कर सकता हूं, मैं अच्छी क्लास करा सकता हूं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा सूक्ष्म रूप से जो घमंड है, अहंकार है, ये भी हमारे पुरुषार्थ को रोक देता है, हमारे पुरुषार्थ में विघ्न बन जाता है। तो वो घमंड की मंडी दिन प्रतिदिन इजाफा तो नहीं होता जा रहा है। और दूसरा इसके बाद देखेंगे हम, योग का भी अभिमान होता है। कई बार अगर हम योग में बैठे हैं तो बाजू वाला अगर कोई हिलता है तो सोचते हैं इसकी तो एकाग्रता है ही नहीं, ये तो हिल रहा बार बार, मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है। तो वो यही भी एक सूक्ष्म रूप से हमारा अभिमान बढ़ता जाता है कि मेरी तो योग की भिन्न स्थितियां हैं, मैं बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कर लेता हूं, और इनको तो अनुभव ही नहीं है, बार बार हिलते रहते हैं, खांसते रहते हैं, उठते रहते हैं, पांव हिलाते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो कहीं हम ज्ञान की जो विभिन्न स्मृतियां हैं उनसे अनभिज्ञ हो जाते हैं, और उस योग में से जो एक सर्वोच्च अवस्था का अनुभव करना चाहिए अहंकार से मुक्त होने के लिए, उससे भी वंचित रहते हैं। क्योंकि योग की थोड़ी सी अनुभूति के बाद हम अपने आप को कुछ अगर समझने लग जाते हैं तो भी हमारा अभिमान में दिन प्रतिदिन हमारा अभिमान बढ़ता जाता है, और वो अभिमान हमारे लिए ही एक फांसी का पंदा, हमारे पुरुषार्थ की फांसी का पंदा बन जाता है। तो ये भी चीज है कि हमको इस चीज में भी हमको अभिमान नहीं करना है। फिर कई बारी जीत का भी अभिमान होता है, क्योंकि हार जीत तो जीवन में चलती रहती है, लेकिन ब्राह्मण जीवन में अधिकतर अगर हम श्रीमत अनुसार चलते हैं तो जीत होती रहती है, लेकिन उस जीत का भी हमको अभिमान ना आ जाए, क्योंकि जीत अगर हमने एक बार प्राप्त की, अभी तो हजारों कदम इस सफर पर हमको तय करने हैं, और आगे आने वाले सफर में कौन कौन से ऐसे पॉइंट आएंगे जहां हमको माया किस रूप से खड़ी है, सुनहरी मृग तृष्णा के रूप में खड़ी है, सुनहरी मृग माया के जाल अनेक प्रकार के हैं, कहां ना कहां हमारे पिछले के अनेक प्रकार के जन्मों के हिसाब किताब भी हमारे सामने आ सकते हैं, तो हम ये ना हम सोच ले कि हम तो जीत पहले हमने कर्म भोग पर भी कर्मयोग से जीत पहन ली है, या छोटी छोटी बातें आती उन पर हम विचलित नहीं होते हैं, हम स्टेबल रहते हैं, हमारा मन एकदम एकाग्र रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले समय में समय के प्रतिश्चेत रहें, अपनी जीत पर हमको वही नहीं रुक जाना चाहिए कि ये मेरी फाइनल जीत है, अंतिम जीत है, ये तो चलते रहना है, जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है, तो कहीं ना कहीं इस पर भी हमको घमंड ना हो जाए। और फिर हमको अपने कई बार संसाधनों पर भी घमंड होता है, प्रॉपर्टी संसाधन कि मेरी तो इतनी प्रॉपर्टी है, यहां भी है, वहां भी है, विदेश में भी है, या कई जगह है, संसाधनों का घमंड है, इनके पास ये वाले संसाधन है, मेरे पास इससे ज्यादा होने चाहिए, या आज ये संसाधन है और थोड़े बढ़ने चाहिए, तो दिन प्रतिदिन संसाधन भी कहीं हमारे घमंड की हमें घमंड की मंडी में तो नहीं घसीटता हुआ ले जाता जा रहा है, तो भी हमको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर विशेषताओं का घमंड होता है, हुनर का घमंड, जो विशेषताएं हमको प्रभु प्रसाद के रूप में प्राप्त हुई हैं, एक हमको एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ दूसरों की सहायता करने का, लेकिन ये भी हमको घमंड आ जाए कि हम दूसरों की सहायता कर रहे हैं, ये तो एक हमको सुनहरा चांस मिला हुआ, गोल्डन चांस मिला हुआ है, जो हमको गॉडली गिफ्ट मिला हुआ है, सहायता क्या कर रहे हैं, ये तो एक हिसाब किताब ही है, वास्तव में अगर हम हमारे से अगर किसी की सहायता हो भी रही है तो हो सकता है पिछले जन्म में हमने उनसे सहायता ली है, तो हम ये सोच के सेवा नहीं करें हम इनकी सहायता कर रहे हैं, इनको हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो केवल हिसाब किताब पूरा करने का एक समय संगम में मिला हमको जिस पर हमको पूरा कर रहे हैं, तो कोई किसकी वास्तव में सहायता नहीं कर रहा है, ये तो ड्रामा अनुसार जो हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है। तो सेवाओं की क्षेत्र में जब हम उतरते हैं तो हमको ये थोड़ा याद रखना है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं एक हमको सौभाग्य मिल रहा है, उनका हम ढिंढोरा नहीं पीटे कि हमने इतनी सेवाएं की है, इतने सेंटर खोल दिए हैं, इतनों को ज्ञान सुना दिया है, इतने भाई बहने हमारी बदौलत ज्ञान में आए हैं, इतने कम समय में इतने सेंटर खोल दिए, तो सूक्ष्म रूप में सेवाएं भी हमारे पुरुषार्थ को नष्ट कर देती हैं, समय को भी नष्ट कर देती है, बर्बाद कर देती हैं, और अंत में परिणाम देखेंगे तो हमारी झोली में कुछ दिखेगा नहीं। और एक सूक्ष्म अभिमान है धारणाओं का अभिमान, जो धारणाएं सोचते हैं मैं तो मेरी प्योरिटी बहुत अच्छी है, मेरी एकाग्रता बहुत अच्छी है, मैं बहुत विनम्र हूं, नम्र चित हूं, मेरे जैसा विनम्रता है ही नहीं किसी में भी, ये भी एक घमंड है, क्योंकि ये घमंड जो सूक्ष्म रूप से है ये भी हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन जाते हैं, तो इनसे भी हमको रहना कि मैं तो बहुत संतुष्ट रहता हूं, मेरा निश्चय बहुत पक्का है, मेरी आवाज बहुत मीठी है, मेरा व्यवहार बहुत अच्छा है, मेरी नेतृत्व करने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो ये जो घमंड है ये सूक्ष्म रूप से हमारे मन बुद्धि को जैसे पकड़ के रहते हैं, जैसे बताया ना श्रेष्ठ कर्म में फंसना भी, तो ये श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ विचार, ये ज्ञान भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बाधक ना बन जाए, जो हमको बांध के रख दे कि हम अपने को समझ तो बहुत अच्छा रहेंगे, लेकिन पता नहीं कौन सा पल ऐसा आ जाएगा जो हमारा जो लंबे समय से सूक्ष्म रूप से जो अभिमान इकट्ठा हुआ है वो हमारे ऊपर ही हावी हो जाए, वो हमें अपने नीचे दबा दे, तो ये सूक्ष्म रूप से ये जो घमंड है तो भी हमको इससे मुक्त रहना है। अब इससे छूटने की कुछ हम युक्तियां देखेंगे कि कैसे हम इससे छूट सकते हैं, कैसे छूट सकते हैं हमारे में जो घमंड है। हाँ जी, माटी कहे कुमार से क्या कहे, तू क्यों मुझे रौंदे, हाँ एक दिन आएगा मैं तुझे रौंदूंगी, मिट्टी में मिल जाएगा, बताया ना स्टार्टिंग में कि मुट्ठी भर खाक है, ये जो शरीर है हमारा मुट्ठी भर खाक है, ऐसे सब मिल जाएगा मिट्टी में ही, तो इस चीज का हमको गुमान किस लिए रखे हम, तो एक तो है हमको तुलना नहीं करनी किसी से, क्योंकि स्थूल रूप से जो हमारा घमंड शुरू होता है सबसे पहले तो हम तुलना करना शुरू कर देते हैं दूसरों से, तो हमको तुलना नहीं करनी है। बाबा ने हम सबको इतने ज्ञान के अच्छे अच्छे पॉइंट बताए कि इस ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, कोई किसी से कुछ छीन नहीं सकता है, कोई एक दो से आगे हम सोचे हम जा सकते हैं, वास्तव में सबका अपना अपना फिक्स है, लेकिन हमको ये पॉइंट हमको पहले नहीं रखना है, ये तो बाद में रखना है। एक मन की अवस्था है, ड्रामा के पॉइंट मन ही मन में एक उनका चिंतन करने की बात है ये, क्योंकि हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, हर आत्मा अपने आप में यूनिक है, हर आत्मा विशेष है, हर आत्मा एक भगवान के द्वारा चयनित है वो, तो हम दूसरे के पार्ट को ये देख के विचलित नहीं, उनसे तुलना नहीं करनी है, वहां हमको एक साक्षी अवस्था का भाव बनाना पड़ेगा। जैसे बाबा विचलित क्यों नहीं थे, क्योंकि साक्षी है वो, जितना हमारी अवस्था साक्षी होती जाएगी तो हम इन चीजों से मुक्त होते जाएंगे, तो दिन प्रतिदिन हमारा साक्षी दृष्टा की अवस्था भी ये बढ़ती रहनी चाहिए, कर्म करते हुए भी और चलते फिरते भी दूसरों के पार्ट को देखते हुए साक्षी होकर देखें, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। और एक अभ्यास करने की जरूरत है अशरीरी, क्योंकि जितना भी घमंड आता है वास्तव में ये बॉडी कॉन्शियस है, देह में आने से ही घमंड की प्रक्रिया सारी चालू होती है, तो जितना हम अशरीर अवस्था का अनुभव करते हैं उस निराकार दुनिया में जो हमारा असली घर है, जहां आत्मा स्वतंत्र है, जहां किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, कोई वहां रुकावट नहीं है, उस अवस्था में लंबे समय से हम स्थित रहेंगे तो हमें कोई भी प्रकार का घमंड हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा, क्योंकि बॉडी में आने से ही सारे घमंड सारे अहंकार चालू होते हैं, अहंकार की आग पैदा होती है, जिस अहंकार में उस अहंकार की हमको अगर स्मृति रहती है तो जैसे ब्राह्मण जीवन में जैसे दम घुटता है, जैसे पुरुषार्थ हमारा रुका रुका लगा रहता है, उस पुरुषार्थ उस अहंकार की अग्नि में जैसे जल रहे हैं, तो हमको लंबे समय तक अशरीरी अवस्था में अगर हम स्थित रहते हैं, उस बॉडीलेस स्टेज में स्थित रहते हैं, परम धाम की जो हमारी निराकारी अवस्था है उस अवस्था में हम स्थित रहते हैं, तो हमें घमंड से छूटना सहज हो जाएगा। तो हमें इस चीज को भी बढ़ाना है, जो भी हमारी सूक्ष्म अवस्था है, बीज रूप अवस्था जिसको कह सकते हैं, बाबा के साथ लंबे समय तक कंबाइंड, जैसे बाबा बीज रूप हैं ऐसे मैं आत्मा भी मास्टर बीज रूप हूं, जो उसके गुण संस्कार हैं वो ही मुझ में समा रहे हैं, वो हमको बॉडी कॉन्शियस से बाबा इसलिए अलग कर पाते हैं क्योंकि वो परमानेंट उससे फ्री है, तो इस देह के बंधन से भी हमको लंबे समय तक फ्री रहने की हम प्रैक्टिस करेंगे, उसकी उसका एक्सपीरियंस बढ़ाते जाएंगे दिन प्रतिदिन, उसका समय पीरियड बढ़ाते जाएंगे, तो इस घमंड से हम मुक्त रहने सहज रूप से मुक्त रह सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जिनको हमको ध्यान रखना है। हाँ, शिव बाबा को घमंड है ही नहीं है, कितना कहते हैं मैं निरंकारी बन बच्चों को नमस्ते करता हूँ, और ग्लानी हाँ आज मुरली में है ना, सबसे ज्यादा ग्लानी बाप की हुई, फिर श्री कृष्ण उससे ज्यादा, फिर राम की ग्लानी हुई, फिर ब्रह्मा की ग्लानी हुई आज की मुरली में ना, तो ग्लानी होने के बाद भी बाबा को किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है, क्योंकि निराकारी अवस्था में परमानेंट स्थित है, इसलिए बाबा अपने समान बच्चों को बनाना चाहते हैं। है क्या होगा ग्लानी का घमंड कैसे होगा? हाँ, ग्लानी का घमंड तो बहुत खतरनाक है, होगा जरूर होगा वो, क्योंकि जो जो व्यक्ति जिसने पहले ग्लानी सुनी नहीं है वो अपने एक अशुद्ध स्वमान में रहता है, और उसको दो चार गाली का तो करेगा ना वो, तो अगर हम शुद्ध स्वमान में रहते हैं हाँ वो प्रदर्शित, वो हमारे चेहरे से घमंड जो प्रदर्शित होता है, चाहे वो आंखों से मुख से वाणी से प्रदर्शित होता है, हमारे एक्टिविटी से चालचलन से प्रदर्शित होता है, तो ग्लानी का तो अभिमान खतरनाक है। हाँ, और ये थोड़ा सा समय जिससे हमको मुक्ति का समय मिला है केवल संगम में, अगर इस समय को हमने खो दिया तो परमानेंट खो दिया उसको, और घमंड जो है अहंकार जो हमने देखा प्रदर्शनी की किताब में, अहंकार जो है कहाँ शिखर पर है, पहले पांच चार जो है उनको तो क्रॉस कर लिया, लेकिन अंतिम जो अहंकार की चोटी है वहां से गिरकर चकनाचूर, कहते हैं ना लंबा पेड़ खजूर क्या हुआ ऊंचा, गिरे तो चकनाचूर फल लगे आते दूर पंच भी खा, निमित्त भाव भी एक ट्रीटमेंट है। बाबा ने हमको तीन शब्द जो अंतिम ब्रह्मा ने उच्चारित किए थे, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुखारविंद के द्वारा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो ये अंतिम अवस्था है, तो जो पांच दिखने विकार देखते हैं तो अंतिम शिखर पर है वो जीतने के बाद भी निराकारी अवस्था को भी हमने प्राप्त कर लिया, निर्विकारी भी, लेकिन उसका भी है हमको कि हमने निराकार अवस्था का अनुभव कर लिया और निर्विकारी भी बन गए, तो उसका भी अहम ना हो जाए। निमित्त निर्माण इसके लिए बहुत जरूरी है, जीवन में निमित्त, हम केवल एक इंस्ट्रूमेंट है, जैसे एक जड़ इंस्ट्रूमेंट तो वो जहां पड़ा वहां पड़ा रहता है, जब उसको मालिक यूज करता तो वहां उतना यूज करता है, उसको अपना अभिमान नहीं है कोई भी। उसी तरह अगर हम उस अपने को इंस्ट्रूमेंट निमित्त समझकर चलेंगे तो भी थोड़ा बहुत हम अभिमान से मुक्त रह सकते हैं, घमंड से मुक्त रह सकते हैं। तो हम खुद अपने अपने घमंड की मंडी को देखें कि हमारे जीवन में कहां कहां घमंड है, अभिमान है, जिससे हमको मुक्त होना है, जो हमारे ज्ञान युग के मार्ग में बाधक है, जो हमारी उड़ान नहीं भरने, हमें उड़ान नहीं भरने दे रहा है। तो हम अपने अपनी जांच कर सकते हैं। तो कुछ एक हमने घटक देखे, अपमान की फीलिंग ज्यादा आएगी। हाँ, जो जितने घमंडी होते हैं उनको अपमान की फीलिंग, जो बताया ना गलानी, अगर छोटी मोटी भी कोई बात बोल देता है तो उनको बहुत अपमान फीलिंग होता है। नीचे वाली पीछे वाली सीट, हाँ ये छोटी छोटी बातें हैं। हाँ, जैसे अगर हमको स्टेज पर नहीं बुलाया जाता है, या फिर ये ब्राह्मण जगत की बातें आ गई, ये छोटी छोटी, या बाहर भी कर सकते हैं, अगर हमको बुलाया नहीं जाता है, कोई दूर रखता है, या सामने वाली सीट नहीं मिली है, या स्टेज में केक कटिंग नहीं बुलाया, या हम हाँ बिल्कुल हाँ, संसार में तो ऐसे होते हैं ना, महामंडलेश्वर जी आते हैं, सामने बैठते हैं, आगे वहां भी अगर चिटकी मेरी यहाँ लगी है नहीं लगी है वो भी देखते हैं। तो ये सब चीजों से मुक्त होना जो बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है। अहंकार से मुक्ति जो खाला जी का बाड़ा नहीं है, मासी का घर नहीं है इसको, तो खाला शब्द शायद उर्दू का है ना, और बाड़ा घर को कहते हैं, तो अर्थात मासी का घर, तो मासी का घर नहीं है। इससे मुक्त होना वो वास्तव में जितना दिन प्रतिदिन ज्ञानियों के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं तो हमको ये अभिमान पकड़ में आएगा, ये घमंड पकड़ में आएगा, नहीं तो पकड़ में नहीं आएगा। बाहरी रूप से जैसे बाबा ने काल मुरली में कहा कि दिवाली तुमको मनानी है, लेकिन कौन सी दिवाली? ये बाहर वाली संसार वाली दिवाली तुम बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? ये उन बच्चों को अच्छी लगेगी जो जिनमें ज्ञान की कमी है। हालांकि हमको ये भी नहीं करना है कि सास जबड़ ये भी करनी है, अगर हम यहां ही सूखे सन्यासी बन के रहेंगे तो वहां जाके भी क्या करेंगे, ये भी जरूरी है। तो हमको हर एक चीज को साक्षी हो उसका आनंद लेना है, इसको देख के विचलित भी नहीं होना है, ये क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं, सब कुछ जो हो रहा है एक्यूरेट हो रहा है। अगर हम इसको देख के विचलित हो जाए, अर्थात हमारे में भी घमंड है कि इनको ये नहीं करना चाहिए, अर्थात इनको मेरा ही मानना चाहिए, तो ये तो घमंड पैदा हो गया ना। तो हर एक चीज को हमको स्वीकार भी करना है, क्योंकि एक्यूरेट ड्रामा में बिल्कुल ऐसा तो है नहीं कोई जो बिना ड्रामा के हो रहा है, सब उसमें नूंद है। तो ड्रामा का भी हमको मजा लेना है, हर चीज एक्यूरेट हो रही है। तो ज्ञान की जैसे जैसे हमारे जीवन में कमी आती जाती है तो अभिमान हमको पकड़ के रहता है, छूटता नहीं है। तो ये हमने कुछ हाँ, ये सारा बातें पता रहने के बाद भी अहंकार है तो क्या करें बताओ अभी आप तो और पता करो, उसमें और पता करना पड़ेगा कि और इसमें क्यों है अभी भी। तो वो बताना ज्ञान की कमी है, साक्षियों के तो देखेंगे कि अभिमान है। हाँ, लास्ट में सरेंडर कर दिया। हाँ तो वही अंत में माना बाबा के आगे सरेंडर। वास्तव में सरेंडर शब्द बहुत ऊंचा है, ये तो कहने को है हम लोग सरेंडर, लेकिन सरेंडर ना कम बात नहीं है। हमारा संकल्प भी एक भगवान की श्रीमत के खिलाफ ना चले, एक भी कदम उसकी आज्ञा के प्रतिकूल ना हो। हाँ जी, आने वाले संडे की कौन से ब्रह्मचारी और दूसरा हाँ वैष्णव और ब्रह्मचारी की परिभाषा तो वही ना, अगर घमंड है तो आने वाले संडे की मुरली पढ़ेंगे ना और पता चल जाएगा तो इसलिए वो हमको एक ज्ञान पढ़ते रहना चाहिए तो ये चीजें हैं कि अगर फिर भी घमंड है माना ज्ञान की कमी है, पढ़ते रहना पढ़ते रहना पढ़ते रहना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना रोज नए नए पॉइंट समझाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, तभी तो बाबा पढ़ा रहे हैं। स्टडी करते रहो, अध्ययन करते रहो। तो ये कुछ एक बातें देखी हमने कि जो हमें हमको अहंकार तो बहुत है जी, बात मत पूछो अहंकार की मंडी में तो जैसे अहंकार की नुमाइश लगी पड़ी है सबका अपना अपना हो सकता है ना, तो
बताना तो बहुत बड़ा खतरा मोल लेना
है। दूसरों को बताना खतरा मोल तो लेना ही है, और खतरा मोल तो लेना पड़ेगा, लेकिन कोई, क्योंकि उस बताने में कुछ एक ऐसा भी हो सकता है कि कोई उस घमंड से निकल जाए, भले बताने वाला फंसा रहे लेकिन जिसको बताया वो बोले हो सकता निकल जाए, तो उसका शेयर तो मिलेगा कम से कम। तो वही तो बात है ना, तो दोनों का ज्यादा, तो महिलाओं का, महिला पुरुष की बात ही नहीं है इसमें, क्यों, अगर हमने महिला बता दिया तो दिन में हमारी शामत आ जाएगी। ज्ञान की कमी है। इसलिए कहा क्या बोलना चाहिए वो भी देखना पड़ेगा है, भाई को ज्यादा प्रदर्शित होता है, नहीं सब कोई ज्यादा है, सब कोई, ये कोई बाहर की बात नहीं है, तो एक भिखारी को भी हो सकता है घमंड, अहंकार तो रहता ही है बहुत है। आज शिक्षा लेने नहीं आया हूँ, पैसे आए तो दो शिक्षा लेने नहीं आया हूँ, तो उसको अपना अहंकार है, क्योंकि उसका पर्सनैलिटी, उसका धंधा वो है, उसके धंधे को चौपट कर रहा है, उसको दूसरा धंधा सिखा रहा है वो, क्योंकि उसको उसी धंधे में सुख मिल रहा है और उसका एक्सपीरियंस है, उसको अनुभव है, बिना मेहनत के मिल रहा है और उसको मेहनत करने के लिए बोल रहा है वो, तो वो भी बात है। वो भी अभिमान से मांगते हैं क्योंकि उसका हक है, अधिकार है जन्मसिद्ध। तो ये हमने देखा कुछ है, एक तो शारीरिक बलिष्ठता, शरीर की ताकत का, शरीर को जाने संवारने में लगते हैं, उसको जिम में हम कितना वर्जिश कर, ज्ञान में आने के बाद भी, हालांकि आपको, हमको तो ये थोड़ा रखना चाहिए, क्योंकि शरीर हमारा तंदुरुस्त नहीं होगा तो पुरुषार्थ भी ठीक नहीं होगा, ये अमूल्य है। बाबा ने उस दिन कहा ना, अंतिम जन्म में भले सड़ा हुआ शरीर है लेकिन फिर भी इसकी बलिहारी शरीर की, इस शरीर में रहते हुए हम भगवान को याद कर रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए, विश्व की भाषा लेने के लिए, तो उस तरीके से हमको इसका ध्यान रखता है, रखना है, नहीं तो अगर बार बार अगर इसका हमने ध्यान नहीं किया तो डॉक्टर के दर्शन करने पड़ेंगे, और डॉक्टर वही बोलेगा प्राणायाम करो एक्सरसाइज करो, तो वो हमको पहले से ध्यान रखना है। दूसरा बताया शारीरिक सुंदरता का घमंड, ये भी इसी को ना जाते रहे, पाउडर क्रीम लिपस्टिक, उस दिन बताया ना बहन के, आजकल रसोई में सामान कम होता है लेकिन बाथरूम में सामान ज्यादा होता है, इतने प्रकार के शैंपू होते हैं, कौन सा शैंपू लगाएं, संडे को ये शैंपू, मंडे को ये शैंपू, बुधवार को ये और फ्राइडे को ये, हाँ देखो अनुभव, बहन जी को सारा अनुभव है, बोला शैंपू कम क्रीम ज्यादा लगाते हैं आजकल, तो ये तो है ही है वास्तव में इसमें, हाँ आंखों, हाँ आंखें, माना आंखों मेरी नीली आंखें दिखें, मेरी पीली आंखें दिखें, ये आईब्रो पर करते हैं सारा जो भी है, बहनों का बहने जाने, तो ये जो सब बाबा ने कहा ना उस दिन, ये श्रृंगार किया सब फालतू है, ये शरीर सड़ता जाएगा, उससे ज्ञान योग की मस्ती मेरे तो शरीर ठीक हो जाएगा, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी, उस दिन बाबा ने कहा, तो हमको ज्ञान योग का श्रृंगार करना है, तो ज्ञान योग की धारणा नहीं है तो शरीर सड़ता जाएगा, तो ये तन की खूबसूरती भी एक भ्रम है, इस भ्रम से हमको बाहर निकलना है, नहीं तो ये भ्रम भी हमारे घमंडों में इजाफा करता रहेगा, तो ये शरीर जैसे बीमारियों का घर है। फिर तीसरा बताया शारीरिक संबंधों का घमंड, मेरा बेटा ऐसा है, मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, मेरा पति बहुत अच्छा है, कोई कोई होता है मेरा पति तो जैसे देवता ही है, ऐसे बोलते हैं माताएं बीके भी आने के बाद, मन ध्यान लगा हुआ अभी भी उसमें, कौन पति, कौन बेटा, कौन भाई, किसका बहन, सबको वापस जाना है, तो एक अंदर की स्थिति, बाहर से नहीं बोलना किसी को कौन किसका पति है, कौन, अगर बोलेंगे तो घर से निकाल देंगे वो, इसलिए थोड़ा सोच समझ के हमको रहना है, अंदर की स्थिति की बात है। फिर चौथा बताया स्थान का अहंकार, है ना, कि मैं यहां रहता हूं, बहुत अच्छे स्थान पर हूं। फिर पांचवा धन दौलत का घमंड। फिर नेक्स्ट पद प्रतिष्ठा, मैं बॉस हूं, मेरी मानी जाए, मैं इतने सालों से काम करता हूं, मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं, मैं बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे अनुभव है, तो इसका घमंड। फिर नेक्स्ट है जी अनुभव का घमंड, हाँ वो लास्ट में था लेकिन बीच में आ गया वास्तव में। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी का घमंड, संसाधनों का, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, इन सब से मुक्त। फिर नेक्स्ट विशेषताओं का घमंड, फिर जीत का घमंड, विजय का घमंड, फिर बुद्धि का घमंड, मेरी बुद्धि बहुत प्लानिंग बुद्धि है, इंटेलेक्चुअल हूं, मेरी सोच बहुत अच्छी है, अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, हाँ सफलता, जीत सफलता विजय की बात है। फिर टचिंग बिचिंग बहुत अच्छी होती है, सवेरे सवेरे होती है, करना ही एक करना ही पड़ेगा। तो ये है, मेरा चिंतन अच्छा है, क्लास अच्छा है, मेरे शब्द अच्छे हैं, मेरे जैसे शब्द कोई बोल नहीं सकता है। फिर नेक्स्ट ज्ञान का घमंड है। फिर मैं जैसे कि मेरे गले में भी सरस्वती बसती है, ऐसे भी सोच सकते हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस जनरल पब्लिक के लिए बोल रहा हूँ। ये नहीं सोच लेना, हाँ मैं यहाँ चाहता ही बहुत हूँ, मैं कॉमेडियन बहुत हूँ। तो ये भी घमंड है, और ये सच में पुरुषार्थ में रुक देता है एकदम। फिर नेक्स्ट योग का घमंड, कि मैं बहुत अच्छे अच्छे योग के अनुभव कर लेता हूँ, मेरा बुद्धि एकाग्र रहती है, पास वाला हिलता रहता है, अर्थात ध्यान उधर ही जा रहा है। तो अभिमान तो घमंड तो हो गया ना वो, कि ध्यान तो उधर जा रहा है। सेवाओं का घमंड, पहचान बहुत है, हाँ वो ये संबंध में आगे बात, आप पहचान बहुत है, वो हाथ बहुत लंबे हैं, थोड़ा काम हो तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा, एक फोन ही कर दूंगा सीधा, ही बोलने की जरूरत है, तुम जाके मेरा नाम ही लेना बस, भले सामने वाला बता देगा, मैं जानता नहीं उसको, अगर क्योंकि सामने वाले को तो अभिमान होता है ना। तो ये बात है कि सेवाओं का घमंड, धारणाओं का घमंड, जो ये सूक्ष्म घमंड है कि मैं बहुत विनम्र हूं, नम्रचित हूं, मेरी तो एकाग्रता बहुत अच्छी है, निश्चय बहुत अच्छा है, पवित्रता बहुत अच्छी है, संतुष्ट रहता हूं मैं सदा ही, कोई कुछ भी बोलता रहता है मुझे कुछ नहीं होता है, तो अंदर में तो है नहीं, बड़ा खतरा है। फिर अपने मधुर व्यवहार का घमंड, अनुभव का घमंड भी लिखा हुआ है, संसाधनों में आ गया वो, अच्छा मोबाइल है, फिर लेके चेंज करने का संकल्प पता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट है कि पेपर में ढूंढेंगे कौन सा मॉडल अच्छा आ गया, तो पता चल जाता है ये भी चेंज करने के चक्कर में। तो ये अनेक प्रकार के जो घमंड है, इनसे मुक्ति की युक्ति तो कुछ हमने प्रकाश डाला के तुलना नहीं करनी किसी से, हमको अपने ओरिजिनल स्वमान में ऊंची स्थिति में स्थित रहना है, जो हमारी परम धाम की अवस्था है, जो संस्कार बाबा के वो हमारे संस्कार है, उस पर चिंतन करना है हमको, विशेषताओं को, जो हमें विशेषताएं प्रभु प्रसाद के रूप में मिली हैं, उनको प्रसाद समझ के हमको यूज करना है, ऐसे नहीं अपनी विशेषताओं को हम कहीं भी यूज करते रहें, वो भी एक खतरा बन जाता है। अपनी विशेषताओं को हमको कहाँ यूज करना है ये भी हमको थोड़ी सी समझ चाहिए, कहीं हमारी विशेषताएं कहीं किसी के गलत कार्य में हमारी भागीदार ना बन जाए, वो भी हमको देखना है। स्वमान की सीट पर सेट रहना हमको, और समय कौन सा चल रहा है, ये समय हमको अभिमान से मुक्त होने का समय चल रहा है, तो इस समय को हम नजरअंदाज ना करने, तो लंबे समय से हमको अशरीर अवस्था का अनुभव, बीज रूप स्थिति का अनुभव, साक्षी दृष्ट स्थिति में रहना है, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। तो कुछ एक बातों का जो ये चिंतन हुआ, इस पर अगर हम नजर रखेंगे तो कुछ हद तक हम मुक्त हो सकते हैं। चिंतन किया, हाँ वो बीच में आ गया ना, मेरा चिंतन, मेरी बुद्धि, मेरी सोच, हाँ घमंड तो है, ये किसको नहीं है, जब घमंड नहीं होगा तो हम ऊपर ही होंगे। केवल एक ही अवस्था जहां घमंड नहीं है वो है ऊपर, जब तक हम नीचे हैं तब तक तो घमंड है ही है, कोई मुक्त कैसे हो सकता है। ओम शांति। दो मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।
योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो, पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो, योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। विघ्नों से ना घबराए, हंस हंस के सह जाए। प्राणों की दे आहुति, सबके प्राण बचाए। जीवन में सीखा हो हंसना, जीवन में सीखा हो हंसना। काम को ललकारा हो, काम को ललकारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। जीत के द्वंद में कभी निराश न होता हो, हार जीत के द्वंद में कभी निराश न होता हो। जीवन के छाए मेघों को खुशी खुशी भर लेता हो। आंचल में बसी हो करुणा, आंचल में बसी हो करुणा। मुख में ज्ञान की धारा हो, मुख में ज्ञान की धारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का। जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो।